चलिए आज एक बहुत ही मजेदार सफर पर चलते हैं।
एक सफर? कहाँ का सफर?
इमेजिन करते हैं कि हम एक जायंट स्पेसशिप में बैठकर स्पेस में बहुत ऊपर हैं। वहां अंधेरे से जब हमारी अर्थ दिखती है तो कैसा नजारा होता है।
अगर स्पेस से देखें तो मोस्टली ब्लू कलर ही दिखाई देता है, एक चमकता हुआ नीला गोला।
एकदम सही कहा, चारों तरफ एक सुंदर सा ब्लू कलर, और इसी वजह से अर्ली एस्ट्रोनॉट्स ने अर्थ को एक बहुत ही फेमस नाम दिया था। उन्होंने इसको ब्लू प्लैनेट कहा था।
हाँ, क्योंकि अर्थ का ज्यादा हिस्सा पानी से ढका है, और इस डीप डाइव में हमारे छोटे दोस्तों के लिए हम इसी बारे में बात करेंगे।
बिल्कुल, इस डीप डाइव में हम अर्थ के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सोर्स चैप्टर को समझेंगे। हम ओशंस और कॉन्टिनेंट्स के बारे में जानेंगे,
और क्योंकि ये स्पेशली छोटे दोस्तों के लिए है, हम इसको शॉर्ट स्टोरीज और सिंपल वर्ड्स में ब्रेक डाउन करेंगे। हमारा मिशन एकदम क्लियर है।
हाँ, हमारा मिशन है अर्थ के इस ब्लू वाटर और ब्राउन लैंडमास का हर एक राज खोलना, एक एक करके सारी बातें समझेंगे।
तो छोटे दोस्तों के लिए आज का पहला रिमेम्बर दिस पॉइंट यहाँ आता है।
सही कहा, रिमेम्बर दिस, अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि इसका सरफेस मोस्टली ब्लू दिखता है।
तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वाटर और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की, मतलब अर्थ पर पानी और जमीन का हिस्सा कितना कितना है।
इसको एक सिंपल तरीके से सोचते हैं। अगर हम अर्थ को एक बड़े पिज्जा की तरह चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें,
तो उन चार पार्ट्स में से ऑलमोस्ट तीन पार्ट्स सिर्फ वाटर है, जिसको हम 3/4 कहते हैं।
हाँ, ऑलमोस्ट 3/4 हिस्सा सिर्फ पानी है, और जो बचा हुआ एक पार्ट है यानी 1/4, वो हमारा लैंडमास है,
जिसमें हमारी सारी सिटीज, पहाड़ और जंगल आते हैं। 1870 में जूल्स वर्न नाम के एक फेमस राइटर ने भी कुछ ऐसी ही बात कही थी।
अच्छा, उन्होंने क्या लिखा था?
उन्होंने कहा था कि ओशन ही सब कुछ है, और ये ग्लोब का लगभग 7/10 हिस्सा कवर करता है। उन्होंने ओशन को नेचर का सबसे बड़ा रिजर्वॉयर बताया था,
मतलब एक ऐसी जगह जहां नेचर अपनी एनर्जी स्टोर करती है। पर एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये वाटर और लैंड अर्थ पर इक्वली डिवाइडेड नहीं है।
हाँ, दोनों हेमिस्फेयर्स में बहुत डिफरेंस है।
अगर हम ग्लोब को टॉप और बॉटम में देखें तो टॉप हिस्से को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहते हैं, वहां लैंड बहुत ज्यादा है,
और जो बॉटम हिस्सा है यानी सदर्न हेमिस्फेयर, वहां वाटर बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, जमीन ढूंढने से मुश्किल से मिलती है।
वही ना, तो दोस्तों यहाँ एक और रिमेम्बर दिस पॉइंट है, अर्थ का ऑलमोस्ट 3/4 सरफेस वाटर से कवर्ड है।
बिल्कुल, और जब हम इतने सारे पानी की बात कर रहे हैं तो नेचुरल है कि हम दुनिया के 5 ओशंस के बारे में बात करें।
हाँ हाँ, हमारे मैप्स पर इन 5 ओशंस के नाम लिखे होते हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन जिसको एंटार्क्टिक ओशन भी कहते हैं, और आर्कटिक ओशन।
लेकिन एक मजेदार फैक्ट पता है, मैप्स पर इनके बीच लाइंस जरूर होती है, पर रियलिटी में सारे ओशंस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं।
सही में, सी वाटर हमेशा एक ओशन से दूसरे ओशन में बिना किसी रुकावट के फ्लो करता रहता है। ये एक जायंट ग्लोबल ओशन की तरह है।
पर अगर साइजेस कंपेयर करें तो इनमें जमीन आसमान का फर्क है। पैसिफिक ओशन इन सब में सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट ओशन,
और पैसिफिक के बाद अटलांटिक और इंडियन ओशन का नंबर आता है। और सबसे छोटा, मतलब स्मॉलेस्ट ओशन कौन सा है?
सबसे छोटा आर्कटिक ओशन है, जो ऊपर नॉर्थ में मोस्टली आइस से कवर्ड रहता है।
इंडियन ओशन का नाम आया तो मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल कनेक्शन याद आ रहा है, इंडियन नेवी से जुड़ा हुआ।
हाँ, इंडियन नेवी के एम्ब्लेम पर एक बहुत सुंदर मोटो लिखा है, सम नोह वरुणा,
जिसका इंग्लिश में मतलब होता है, बी ऑस्पिशियस टू अस ओ वरुणा।
वैदिक लिटरेचर में वरुणा ओशन, स्काई और वाटर के देवता माने जाते हैं।
हाँ,
तो हमारी नेवी ओशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए उनका आशीर्वाद लेती है।
अरे वाह, और इंडियन ओशन के बॉर्डर्स भी देखें तो पता चलता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। इसके नॉर्थ में एशिया है, वेस्ट में अफ्रीका, और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है,
और हमारे इंडिया के दोनों तरफ इसके दो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट्स है।
हाँ, वेस्ट साइड में अरेबियन सी है और ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है।
तो इस कॉन्सेप्ट का रिमेम्बर दिस पॉइंट नोट कर लीजिए।
रिमेम्बर दिस, पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट ओशन है, और आर्कटिक ओशन सबसे छोटा यानी स्मॉलेस्ट ओशन है।
अब जब हम ओशंस की बात कर ही रहे हैं तो पानी के ऊपर की नहीं, पानी के अंदर की जादुई दुनिया की भी बात करते हैं, मैजिकल ओशन लाइफ।
समुंदर के अंदर की दुनिया, वहां इतने सारे मैजिकल एनिमल्स और प्लांट्स हैं जिसको हम मरीन लाइफ कहते हैं।
यहाँ हमारे दोस्तों को दो नए इंग्लिश वर्ड सीखने को मिलेंगे, एक है फ्लोरा और दूसरा है फौना।
फ्लोरा का क्या मतलब होता है?
मरीन फ्लोरा का मतलब है ओशन के प्लांट्स, जैसे ओशन में मिलने वाले टाइनी एल्गे और बड़े बड़े सीवीड्स, ये सब फ्लोरा है।
अच्छा, और फौना का मतलब एनिमल्स होगा फिर?
एकदम सही, फौना का मतलब एनिमल्स होता है।
अगर हम ओशन क्रीचर्स की शॉर्ट स्टोरीज सोचें तो कितनी कलरफुल फिश होती हैं, स्मार्ट डॉल्फिन्स होती हैं जो आपस में बातें करती हैं,
और जायंट स्पर्म व्हेल्स होती हैं जो किसी बस से भी बड़ी होती हैं, शार्क्स होती हैं, बर्फीले पानी में एम्परर पेंगुइन्स तैरते हैं,
सी टर्टल्स लंबे सफर पर निकलते हैं,
और ओशन के बॉटम पर कोरल रीफ्स होते हैं जो एक अंडरवाटर जंगल की तरह लगते हैं। एक बड़ा मजेदार नजारा होता है जब एक स्टारफिश किसी सी एनिमोन पर बैठती है। सी एनिमोन प्लांट जैसा लगता है पर एनिमल होता है।
ये सच में एक अलग ही दुनिया है। तो दोस्तों, यहाँ का रिमेम्बर दिस पॉइंट है,
मरीन फ्लोरा का मतलब ओशन के प्लांट्स हैं और फौना का मतलब ओशन के एनिमल्स हैं।
ओशन लाइफ तो बहुत सुंदर है, लेकिन ओशंस का हमारे मौसम यानी वेदर से बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है, एक कॉज और इफेक्ट का रिलेशन।
हाँ, ओशंस और वेदर आपस में दोस्ती करके चलते हैं। ओशंस के पानी से ही तो बड़े बड़े क्लाउड्स बनते हैं।
वही क्लाउड्स उड़कर आते हैं और हमारे इंडिया में मानसून रेन्स लाते हैं, बारिश होती है।
सोचिए, अगर ओशंस नहीं होते तो अर्थ एक सूखा डेजर्ट बन जाती, खेत में फसल नहीं उगती, एग्रीकल्चर बिल्कुल नहीं हो पाता।
पर ओशंस का एक दूसरा साइड भी है, डिजास्टर्स वाला साइड। कभी कभी ओशन से डेंजरस स्टॉर्म्स भी आते हैं।
हाँ, जिन्हें हम साइक्लोन्स कहते हैं, तेज हवा और बारिश वाले तूफान। इन साइक्लोन से कोस्टल रीजन्स में बहुत डैमेज होता है।
और साइक्लोन्स के अलावा एक और बहुत बड़ा डिजास्टर है जो ओशंस में आता है, सुनामी।
सुनामी आम लहरों जैसी नहीं होती, ये एक बहुत बड़ी और पावरफुल वेव होती है।
और इसका कॉज क्या होता है? ओशन के बॉटम में आने वाला अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शन, जब जमीन हिलती है पानी के अंदर।
इसका एक बहुत ही सैड रियल लाइफ एग्जाम्पल है हमारे पास। 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया के पास समुन्दर में एक अर्थक्वेक आया था।
उस अर्थक्वेक ने एक बहुत बड़ा सुनामी क्रिएट किया था, उसका असर 13 कंट्रीज पर पड़ा था।
हाँ, और उस डिजास्टर में 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई थी। इंडिया में भी इसका बहुत असर हुआ था।
इंडिया में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, तमिलनाडु और केरला में बहुत भारी डैमेज हुआ था। वो एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी था, फिर डील करती है ताकि लोगों को बचाया जा सके।
तो इस इम्पोर्टेंट डिस्कशन का रिमेम्बर दिस फैक्ट है,
रिमेम्बर दिस, 26 दिसंबर 2004 को इंडियन ओशन में एक बहुत बड़ा सुनामी आया था।
तो हमने वाटर की बात कर ली, अब अर्थ के लैंड मासेस की तरफ चलते हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स की कहानी की तरफ।
अर्थ पर जो पानी के बाहर के बड़े लैंड मासेस हैं उन्हें कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, लेकिन आपको पता है लोग इसके नंबर्स पर आर्ग्यू करते हैं।
हाँ, कुछ लोग कहते हैं 4 कॉन्टिनेंट्स हैं, कुछ 5 मानते हैं,
पर जो सबसे वाइडली एक्सेप्टेड नंबर है, जो हमारी बुक्स में भी है, वो 7 है। अर्थ पर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं।
उनके नाम है अफ्रीका, एंटार्क्टिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका।
पर कुछ जियोलॉजिस्ट यूरोप और एशिया को अलग नहीं मानते, क्योंकि वो एक ही जमीन से जुड़े हुए हैं, उनके बीच पानी नहीं है,
इसलिए वो उसको एक सिंगल कॉन्टिनेंट मानते हैं और उसको एक नया नाम देते हैं, यूरेशिया। यूरोप और एशिया मिलकर यूरेशिया।
ये एक मजेदार फैक्ट है। और कॉन्टिनेंट्स का एक और मजेदार फैक्ट मुझे ओलंपिक गेम्स से याद आया।
हाँ, ओलंपिक गेम्स का लोगो, उसमें 5 कलरफुल रिंग्स होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं।
वो 5 रिंग्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं?
वो दुनिया के उन 5 इनहैबिटेड कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं जहां लोग परमानेंटली रहते हैं।
मतलब अफ्रीका, अमेरिका जिसमें नॉर्थ और साउथ दोनों आते हैं, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप।
एंटार्क्टिका इसमें नहीं है क्योंकि वहां आम लोग नहीं रहते।
तो यहां का रिमेम्बर दिस फैक्ट बन जाता है,
रिमेम्बर दिस, अर्थ पर वाइडली एक्सेप्टेड 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और ओलंपिक के 5 रिंग्स इनहैबिटेड कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं।
कॉन्टिनेंट्स तो बहुत बड़े रहे, पर जो थोड़ी छोटी जमीन होती है पानी के बीच में, उसको आइलैंड कहते हैं।
आइलैंड एक ऐसी जमीन होती है जिसके चारों तरफ पानी होता है, हर तरफ से पानी से घिरी हुई।
और दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड। ये इतना बड़ा है कि इसमें इंडिया के 10 सबसे बड़े स्टेट्स इजीली फिट हो सकते हैं।
अरे वाह, पर हमारे इंडिया के पास भी अपने आइलैंड्स हैं। इंडिया के पास 1,300 से ज्यादा स्मॉल आइलैंड्स हैं।
उनके 2 मेन ग्रुप्स हैं, बे ऑफ बंगाल की तरफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं,
और दूसरी तरफ अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं। ये सब ट्रॉपिकल और गर्म जगह है।
लेकिन एक कॉन्टिनेंट ऐसा है जो बिल्कुल गर्म नहीं है, बर्फीला एंटार्क्टिका। वहाँ सिर्फ आइस ही आइस है।
एंटार्क्टिका मोस्टली आइस से कवर्ड है और वहाँ इतनी ठंड होती है कि वहाँ रहना बहुत मुश्किल है।
पर हमारे इंडियन साइंटिस्ट वहाँ गए हैं। ये एक कूल स्टोरी है। 1981 से इंडियन एंटार्क्टिका प्रोग्राम चल रहा है
और 1983 में वहाँ इंडिया ने आइस के ऊपर अपना पहला बेस स्टेशन बनाया था। उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री।
सोचिए, इतनी ठंड में उन्होंने वहाँ साइंटिस्ट के पढ़ने के लिए एक लाइब्रेरी बनाई और एक पोस्ट ऑफिस भी बनाया।
आइस के बीच में पोस्ट ऑफिस, ये सच में अमेजिंग है। तो छोटे दोस्तों, रिमेम्बर दिस।
ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है और दक्षिण गंगोत्री एंटार्क्टिका में इंडिया का पहला बेस स्टेशन था जो 1983 में बना था।
अब हमने ओशन और लैंड दोनों को समझ लिया, लेकिन एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, हमारे लिए ओशंस इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं?
हाँ, हमें इनको बचाने की क्या जरूरत है? ओशंस को बचाओ, अर्थ को बचाओ, ऐसा क्यों कहा जाता है?
क्योंकि ओशंस हमारी अर्थ का क्लाइमेट रेगुलेट करते हैं, और सबसे बड़ी बात, जो ऑक्सीजन हम सांस लेने के लिए यूज करते हैं
वो पेड़ों से आती है ना?
जमीन के पेड़ों से आती है, पर आधे से ज्यादा ऑक्सीजन ओशंस के मरीन फ्लोरा यानी पानी के अंदर वाले प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं।
सोचिए, दुनिया की हाफ से ज्यादा ऑक्सीजन ओशन से आती है, इसलिए ओशंस को प्लैनेट्स लंग्स यानी अर्थ के फेफड़े कहा जाता है।
हम शिप से ट्रेड और ट्रैवल के लिए भी ओशंस का यूज करते हैं, पर अब एक सीरियस प्रॉब्लम शुरू हो गई है।
इंसान ओशंस को बहुत गंदा कर रहे हैं। हम लोग मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट समुंदर में फेंक रहे हैं,
जिससे मरीन एनिमल्स को बहुत नुकसान हो रहा है। और एक और प्रॉब्लम है, ओवर फिशिंग, मतलब बहुत ज्यादा मछलियां एक साथ पकड़ना।
जब हम इतनी ज्यादा फिशिंग करते हैं तो मरीन लाइफ डेंजर में आ जाती है, उनकी फैमिली खत्म हो जाती है।
इसी वजह से साली दुनिया को जगाने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने जून 8 को वर्ल्ड ओशंस डे डिक्लेयर किया है।
ये दिन हमें याद दिलाता है कि अगर हमने अपने प्लैनेट्स लंग्स को प्रोटेक्ट नहीं किया तो अर्थ पर कोई नहीं बचेगा।
तो हमारा आखिरी रिमेम्बर दिस फैक्ट है,
रिमेम्बर दिस, जून 8 को वर्ल्ड ओशंस डे मनाया जाता है और ओशंस को प्लैनेट्स लंग्स कहा जाता है।
तो दोस्तों, इसके साथ ही हमने आज का अपना मिशन लगभग कंप्लीट कर लिया है। एक छोटी सी समरी देख लेते हैं।
आज हमने सीखा कि अर्थ ब्लू प्लैनेट क्यों है, हमने 7 कॉन्टिनेंट्स देखे और 5 इंटरकनेक्टेड ओशंस के बारे में जाना,
सुनामी के कॉजेस को समझा, और ये भी सीखा कि ओशंस हमारे प्लैनेट्स लंग्स हैं जो हमारी डेली लाइफ और वेदर के लिए बहुत जरूरी हैं।
पर डीप डाइव एंड करने से पहले एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल हम अपने दोस्तों के लिए छोड़ेंगे। सोचिए,
ओशंस इतने डीप और डार्क हैं और इंसानों ने उसका एक बहुत ही छोटा हिस्सा एक्सप्लोर किया है।
तो जरा सोचिए, समंदर के डीप डार्क बॉटम में जहां लाइट भी नहीं जाती, वहां और कौन कौन से अजीब और नए मिस्टीरियस मरीन एनिमल्स छुपे हो सकते हैं?
ऐसे क्रीचर्स जो इंसानों ने आज तक देखे ही नहीं है, वो वहां हैं पर हम उन्हें जानते नहीं।
ये सोचने वाली बात है ना? ऐसे ही सवाल पूछते रहिए और इन बातों को एक्सप्लोर करते रहिए।
इस डीप डाइव को सुनने के लिए बहुत शुक्रिया दोस्तों।
हमेशा सीखते रहिए और हमेशा क्यूरियस रहिए।